करेंगे अपना कोई स्वार्थ नहीं था। इस जगत में मैया अपने बेटे के लिए रोएगी, पत्नी अपने पति के लिए रोएगी, इसलिए कि उनसे कुछ स्वार्थ था। गोपियों का कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत यदि पढ़ने का सौभाग्य होगा और किसी वैष्णव के साथ में सुनने का, सब कुछ समझेंगे, ऐसा नहीं समझा जा सकता। गोपियां श्रृंगार करती हैं कृष्ण के लिए, भोजन करती हैं कृष्ण के लिए, जो कुछ भी करती हैं कृष्ण से मिलती हैं, कृष्ण के लिए मिलती हैं, अपने लिए, और कृष्ण भी अपने लिए नहीं गोपियों के लिए करते हैं। ऐसा उन्नव था, जगत में प्रेम का ऐसा कहीं भी विवरण नहीं है। लाला मजनू के प्रेम में भी नहीं है, किसी के प्रेम में भी नहीं है, वो तो बेकार का एक बोगस चीज है लाला मजनू। कृष्णचंद्र जी रह न सके, उनके कीर्तन को सुन करके झट आविर्भूत हुए। ताशाम आविर्भूत शौरीस्मान मुखाम बजा सीताम्बरदर सगवर सक्षात मन 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 मथा। कामदेव जगत में बड़े सुंदर हैं, यदि थोड़ी सी कामना जगत में काम उत्पन्न हुआ, आप उसे चेक नहीं कर सकेंगे। जैसे कुत्ता कुत्तियों के पीछे डोलता है, ऐसे आदमी डोलने लगता है। जैसे शंकर जी मोहिनी रूप देख करके अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, पीछे चले, मोहिनी के पीछे पीछे भगे, उसमें मृगछाला कहाँ गिर गया, त्रिशूल कहाँ गिर गया, उल्लंघ होकर के डोलने लगे। पार्वती जी उनको पकड़ने चली, नहीं पकड़ सके। ऐसा आदमी पागल हो जाता है ये संसार में, जैसे कुत्ते होते हैं, ऐसा ये काम है। बहुत ही कामदेव जी तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत, और कृष्णदेव क्या है, कामदेव के भी कामदेव के कामदेव, इतने अधिक सुंदर। वो कृष्ण सुंदरता की खान, यहां तक कि राम नारायण इतने सुंदर थे, मुस्कुराते हुए, कुछ लज्जित होते हुए, गले में कपड़ों को ऐसे करते हुए, दीनहीन हो करके उनकी पहनाई हुई माला के साथ ही साथ में उनके सामने में नीचे देख रहे हैं, आंखों से और कंठी से इधर उधर भी देख रहे हैं, मानो बहुत अपराध किए हों। गोपियों की सभा से निकल करके चले गए। गोपियां कह रही हैं, तुम्हारे लिए हम लोगों ने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, पतियों को छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, धर्म छोड़ा, यहां तक कि लज्जा को भी हमने छोड़ दिया, गुरुजनों को छोड़ दिया, अब तुम हमें इस रात के समय में, आधी रात के समय में, अंधकार के समय में, गहन वन में, और हमें ऐसे छोड़ दिया, बिलबिलाती हुई छोड़ करके चले गए। इसलिए जब प्रकट हुए तो बड़े लज्जित होते हुए उनके सामने, शौरी, शौरी माने क्या, यादव होता है ना, सूरवंश क्षत्रिय, बड़े क्रूर होते हैं, निष्ठुर होते हैं ये लोग यादव लोग। लड़ाई में सामने भाई आ जाएगा तो उसके लिए भी मार डालेंगे। इसलिए ये तुम शौरी हो जदुवंश के, इसलिए इसने निष्ठुर हो, तुम जसोदा मैया के लाडले नहीं हो। जज होते तो ऐसा निष्ठुर तुम काम नहीं कर सकते थे, इसलिए मानो अत्यंत सुंदर रूप में लजाते हुए और वहां पर उपस्थित हुए। गोपियों ने उनको देख करके, एक एक दल में हजारों हजारों गोपियां हैं, उन्होंने अपने दुपट्टे को जिसमें कि उनके अंगों के कुमकुम लगे हैं एक पैक रख करके हजारों आसन बनाए, और कृष्ण अपने ऐश्वर्य शक्ति से एक एक आसन पर विराजे, लाखों सबके लिए सुलभ हुए। यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। एक एक दल की गोपियां समझ रही हैं, हमारे निकट में ही ये कृष्ण बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं, हमारे सामने देख नहीं पाते हैं लज्जा के जल। ये उन्होंने ये अपराध किया जी, हमें छोड़ करके चले गए। कोई गोपी उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उलाहना दे रहे हैं। किसी गोपी ने उनके चबाए हुए तंबुल को ग्रहण कर लिया, किसी ने उनके पैरों को अपनी गोदी में ले लिया, किसी कोई कोई गोपी जरा दूर खड़ी होकर के तिरछी नजर से उनको देख रही है, मानो आंखों के तीर से उनको बेदना चाहती है। क्या तुम यही सुपुरुषों का ये प्रेम की रीति है? हमने सर्वस्व तुम्हारे लिए छोड़ दिया और हमको तुमने छोड़ दिया, यही क्या प्रेम है? मानो इस प्रकार से ताना देती हुई उनके तरफ में देख रही है। इसमें बहुत तरह की गोपियां होती हैं, स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ सोही। इसमें कहने का अधिक समय नहीं है, बहुत इसमें भाव छिपे हैं। ये प्रेम के तारतम्य के ऊपर में है। जिसका प्रेम है किंतु कोई प्रेम घृत स्नेह कहलाता है, जैसे चंद्रावली जी का है, उनका यह भाव है कि मैं कृष्ण की हूं, इसलिए वो कृष्ण के हाथों को अपने हाथों में लेकर के उलाहना दे रही, आंखों से आंसू आ गए और कृष्ण को मानो उलाहना दे रहे, हमें छोड़ करके चले गए, किंतु उनका हाथों का हाथों को लेकर कुछ कह नहीं रहे। दूसरी गोपी उनके चर्बित पानों को ले रही, कोई उनके हाथ को लेकर के अपने कंधे पर रख रही है, ये श्यामला इत्यादि जी कर रही है। और दूर से जो खड़ी है वो श्रीमती राधिका ललिता विशाखा, इनका अत्यंत अधिक प्रेम है, मधुर स्नेह का प्रेम। ये समझती हैं ये कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूं, इससे बहुत ऊंचा है, कृष्ण मेरे हैं। ये दूर से खड़ी होकर के तिरछी नजरों से कृष्ण को उलाना दे रही है, तुम्हारा प्रेम कैसा, तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग किया, ये सुपुरुषों का यही प्रेम है। और उलाना देख करके बड़ी दूर से कटाक्षों के द्वारा कृष्ण के हृदय को भेज रही है। कृष्ण लज्जित हो गए। उन गोपियों ने पूछा, अच्छा ये तो बतलाइए महाशय जी, कोई प्रेम करता है और उसके बदले में उससे कोई प्रेम करता है, जो प्रेम करता है उसे कोई प्रेम करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई प्रेम नहीं करता उसको भी वो प्रेम करता है, और तीसरा व्यक्ति है जो प्रेम करे और न करे किसी को प्रेम नहीं करता। महाशय जी, आप इन तीनों में से कैसे व्यक्ति आप हैं, फिर से समझो। यदि कोई प्रेम करता है तो उसको वो व्यक्ति प्रेम करता है। हमसे किसी ने प्रेम किया, हमने भूल से प्रेम किया, साधारण बात। आप इस तरह इस व्यक्ति की कोटि में हैं और दूसरे होते हैं प्रेम नहीं करता कोई तभी उसको प्रेम करते हैं, क्या आप इस कोटि में हैं? तीसरी बात, कोई भी प्रेम करे और न करे किसी को वो प्रेम नहीं करता, तो आप तीन कोटि में से कौन से कोटि के हैं, आप कृपा करके ये बतला दीजिए। कृष्ण कुछ लज्जित होते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्यारी गोपियों, मेरी सखियों, मैं इनमें से एक भी नहीं हूं। गोपियों ने कहा, ये कैसे नहीं है, बतलाइए। तो कृष्ण बतला रहे हैं, प्रेम करने के बदले में जो प्रेम करता है वो बनिया है, अग्रवाल और क्या खंडेलवाल, वो बनिए हैं। सॉल्व करके लेते हैं, सॉल्व करके देते हैं, बल्कि घटिया माल दे करके पैसे अधिक वसूल कर लेते हैं। दिखलाएंगे सैंपल, दिखलाएंगे अच्छा, और डंडे भी मार लेंगे, घटिया माल भी दे देंगे। जो प्रेम के बदले में प्रेम चाहते हैं और जो प्रेम करता है उसके बदले में जो प्रेम करते हैं, ये बनियागिरी है। दो पैसा दिया, मसाला हमको दे दो, उसने मसाला भर करके आपको दो पैसे का आपको दे दिया, ये बनियागिरी। हमने प्रेम किया तो प्रेम किया, उसने कहा जी मैं ऐसे घटिया प्रेम का नहीं, ऐसा घटिया प्रेम बनिया हमको मत बतलाओ। बात भी ठीक है, हम प्रेम करते हैं उस दूसरे से, चाहते हैं ये प्रेम करें, वो प्रेम नहीं है, बनियागिरी है। ऐसा भगवान से प्रेम मत करो। दूसरी बात है, उन्होंने पूछा प्रेम न करता है तभी वो उसे प्रीति करता है, प्रेम करता है, ये कौन है? ये माता पिता और गुरु है। बेटा और बेटी चाहे पिता माता की सेवा करे न करे, शिष्य गुरु की सेवा करे न करे, तभी वो पिता और गुरु उनका कल्याण चाहता है। वो यदि घर से बाहर होकर के भी पिता माता की सेवा नहीं करते हैं तभी ये उनका कल्याण चाहता है, और उनको सतत सलाह करके बिना किसी कारण के भी उनका कल्याण चाहता है, ये लोग। किंतु मैं भी इसमें भी नहीं हूं, किंतु ऐसे लोग जो हैं इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, इसमें धर्म भी है और सौहृद भी है। सौहृद माने क्या? सुहृदता, प्रीति इसमें है, इसमें स्वार्थ नहीं है। आजकल पिता में भी और गुरु में भी ऐसा नहीं देखा जाता। क्यों? आजकल गुरु भी ऐसे नहीं है। गुरु कहता है कि पैसा लाओ, और जो शिष्य पैसा नहीं लाएगा उसको गुरु चाहे कितनी भी सेवा करे, जितना भी विद्वान हो, उसको आजकल के कलयुग वाले गुरु उनको नहीं मानते। जितना पैसा देगा वाह बहुत बढ़िया, किंतु ये कलयुग गुरु है, ये गुरु है ही नहीं, गुरु से संबंध नहीं। गुरु तो कृष्ण के गुरु थे, कैसे कष्ट करने के बाद में कह दिया जाओ तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाए, और हो गई ना? कैसे कृष्ण और सुदामा जी ने जंगल में रह करके रात भर पानी में भीगते हुए खड़े रहे, लकड़ी का बोझ लेकर के, उनके गुरु शांतिमणि मुनि जी खोजते हुए, अरे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है सुदामा, और खोजते खोजते गए, देखा अरे क्या कर रहे थे तुम घर, अभी लौटे नहीं। गुरु जी बड़ी वर्षा हुई, रास्ते में पानी जम गया, कहाँ कितना पानी है था नहीं था, और लकड़ी भीग जाएगी, इसलिए हम पानी लेकर सारी रात खड़े रहे। ओ मेरे लिए इतना कष्ट किया, बस ओ मस्त। सब विद्याएं जितनी है वेद की, जिसके लिए हमारे पास में आया था, समस्त विद्याएं हमारे अंदर में स्फूर्ति, बस एक सेकंड के अंदर में सब कुछ स्फूर्ति हो गई। ये गुरु घर से भेजा परीक्षा के लिए, दिखलाया जो कृष्ण और सुदामा कैसे शिष्य हैं, समझ रहे थे ये कैसे हैं, और तब उन्होंने विद्या की सारी स्फूर्ति कर दी। ये गुरु गुरु हैं। जो गुरु अपने शिष्य को कष्ट दे करके वैराग्य की आग में तपा कर और उसको परम शुद्ध बना देता है, त्याग वैराग्य की शिक्षा देता है, भक्ति की शिक्षा देता है, प्रेम की शिक्षा देता है। प्रेम एक आग है, विरह की आग। उस विरह की आग में छटपट करने पर सिद्ध होता है। कृष्ण ने गोपियों को क्या किया, ये विरह के आग में तपा करके उनको एकदम सुंदर उज्जवल बना दिया, जो जगत में अपनी प्रभा को भी खेर रही। इसलिए पिता और गुरु यदि यथार्थ में गुरु और पिता हैं, तो पिता और गुरु का प्रेम में निर्दोष होता है, उसमें कोई भी मल नहीं होता है। वो निष्कपट रूप में उन पर स्नेह करता है, बनियागिरी नहीं करता, कहीं जैसा भी उनके प्रति दुर्व्यवहार करता है, किंतु वो सब समय उनका भला चाहता है। कृष्ण ने कहा इसमें भी मैं नहीं हूं। तीसरी बात अब रही, प्रेम कोई करे और न करे वो किसी से प्रेम नहीं करता। ये चार प्रकार के लोग होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। अब इस चीज को समझो, आत्मकाम, जिनकी कोई कामना ही नहीं रह गई है, कोई कामना नहीं है संसार में, कृष्ण के भजन में प्रमत्त है, सुखदेव गोस्वामी को प्यार करो न प्यार करो, उनको किसी से भी कामना लेना देना नहीं है, वो अपने भाव के तरंगों में डूब रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, उनसे मतलब नहीं, आपसे कुछ लेना देना थोड़े है। वो देखते हैं कि सभी लोग भगवान के प्रेम में मत हैं, सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी से भी कुछ नहीं चाहते, वो बद्ध किसी को देखते ही नहीं, किसी को दुखी नहीं देखते, देखते हैं कि सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे आप्तकामी कोई कामना ही नहीं है, तो उनसे प्रेम करो जगत का संबंधी ने? हम तो जगत में इसको प्रेम कहते हैं ना, जो कोई कामना हो वासना हो तो किसी से प्रेम करते हैं, कोई चीज की कमी है दुखी है, महाराज जी बहुत दिनों से मुझे लड़के नहीं हो रहे, आप कृपा कर दीजिए, ओ मैं बिजनेस कर रहा हूं कोई काम सफल ही नहीं हो रहा है, कृपा दृष्टि आप रखिए जो हमारा ये काम हो जाए, मैं बहुत दुखी हूं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप कृपा कर दीजिए। वो जानते हैं कि साधु संत हैं, ये कह देंगे बस ये दूर हो जाएगा, इसलिए वो प्रीति कर रहे हैं, थोड़े ऐसे ही कर रहे हैं, स्वार्थ लाज करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ का जगत में प्रीति लोग नहीं करते हैं, आज जगत में वो कर सकते हैं शुद्ध भक्त यदि हो तो कर सकते, शुद्ध स्वार्थ रहित कोई प्रीति नहीं। तो आत्मकाम, जिनकी सारी कामनाएं समाप्त हुई, कोई कामना ही नहीं है। वृंदावन में हमने सुना है जो बहुत से ऐसे वैष्णव थे जो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके पास में गए, सोने की थैली उनके सामने रख दी, उन्होंने पत्थर साले भगो यहां से नहीं छुआ, और साले साले कर करके और पत्थर उन पर छोड़ने लगे तो वो भाग, ऐसा नहीं करने से भजन नहीं हो सकता। यदि सांसारिक लोगों की कामना वासनाएं अब पूर्ण करने में लग गए तो ऐसे ऐसे जिद करेंगे, आपका भजन कभी हो ही नहीं सकता, कभी संभवपर नहीं है, सब तरह की फरमाइश करेंगे, महाराज जी ये कर दीजिए, महाराज जी ये कर दीजिए, ऊपर से बड़े प्रेम दिखलाएंगे, तरह तरह से ये सब करेंगे। इसलिए आप काम प्रेम करो ना करो उनसे किसी से मतलब नहीं। दूसरी बात आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाला है, शरीर में नहीं, उनको फुर्सत नहीं है शरीर की तरफ में देखने की, आत्मा में रमण कर रहा है। आत्मा रमण करना मैंने क्या, आत्मा रमण किस में करती है, कृष्ण में रमण करती है, उनके हृदय में भी कृष्ण है, पर कृष्ण की सेवा में ऐसे रमण कर रहे हैं कि उनको संसार की सूद बूद नहीं है। ऐसे कोई रमण करने वाला हो उनको संसार के तरफ से जाओ देखो, जैसे परीक्षित महाराज जी को प्यास लगी थी, कहीं से वो लौट रहे थे और वो गए समीक ऋषि के आश्रम में, और वो तो ध्यान में मग्न थे, भगवान की लीला चिंता में रमण कर रहे थे, और उन्होंने पानी मांगा उनको सुनाई नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि हमको देख करके आंखें बंद कर ली, किंतु भगवान के ध्यान में चिंतन में भगवान की लीलाएं आती हैं, उसमें सेवा करता है आत्मा से, उनको ज्ञान नहीं है, संसार के लोग नहीं समझ सकते। कभी कभी संसार के लोग जाते हैं साधु संतों के पास और संसार की बातें झुलझुला जाते हैं, किंतु वो समझ नहीं पाते कि किस लिए झुलझुला रहे, कृष्ण की सेवा में रहते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े भारी महात्मा थे, उनका नाम था लोकनाथ, उनके पास में एक राजकुमार संसार छोड़ करके उनके पास में आया। उन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, किसी को नहीं देता। बहुत दिनों तक आग्रह किया, नहीं किया। अंत में वो उनकी चट्टी रात में जाकर के साफ करते। बहुत दिनों के बाद देखा जी कौन हमारी चट्टी साफ करता है। एक दिन आधी रात के समय जग करके उसको पकड़ लिया। क्यों करता है? तो राजकुमार नरोत्तम ठाकुर जी रोने लगे। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा मिले, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करेगा तो असहा करेंगे। तो ठीक है, कल जमुना में स्नान करके आ जाए। दूसरे दिन जमुना में स्नान करके आ गए और उनको गोपाल मंत्र और काम गायत्री इत्यादि दिया और कह दिया अब तुमको कहीं नहीं जाना है, रोटी के लिए भी कहीं नहीं जाना है। हमारे आश्रम के पास में बैठ करके सब समय 3 लाख हरिनाम करो। कहीं नहीं जाना है, किसी से बातचीत करना नहीं है। ये नाम कृष्ण और राधा जी हैं। जिस समय तुम हरिनाम करना समझना कि राधा कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक। रोटी की व्यवस्था मैं कर दूंगा, हमारे पास में आएगी तुमको भेज देंगे, कुछ नहीं करना है बस। एक दिन की बात क्या है, अपनी उनकी कोठी एक छोटी सी बना दी फूस की। भजन करते 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 वहां पर एक हलवाहा कृषक आया। दोपहर चिलचिलाती धूप, बहुत प्यास लगी। वो पासी में कुआं था, देखा कि वहां पर डोल और रस्सी नहीं। देखा जैसे वो बूढ़े बाबा तो एकदम ध्यान में तन्मय है और वो जगाने से भी नहीं जगेंगे, इसलिए वो छोटे बाबा के पास में गए। बाबा बाबा बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो, और नहीं तो डोल रस्सी दे दो, हम वहां कुएं से पानी पी लेंगे। कुछ चिंता करके हरिनाम की झोली रख दी और चले गए। डोल और बाल्टी निकाल दी और डोल से पानी खींच करके कुएं से उनको पानी पिलाया। वो चला गया, फिर वो लौट। बूढ़े बाबा लोकनाथ जी ने उनको बुलाया, बेटे इधर सुनो, तुम घर लौट जाओ, अभी तुम हमारे आश्रम में बैठ करके ब्रज में रह करके भजन करने लायक नहीं हो। अभी लोगों को पानी पिलाओ, दुखी लोगों की सेवा करो और भजन करो घर में रहकर। अभी त्यागी होकर के सब छोड़ करके यहां आने की जरूरत है। तुमको उपलब्धि नहीं है कि ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये नाम ही राधा और कृष्ण है। जिस समय नाम करते उस समय समझो मैं राधा कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। एक पति व्रता नारी अपने पति की सेवा में मस्त है और उस समय कोई भिखारी आए तो वो पति की सेवा छोड़ करके नहीं जाती। अच्छा मैं आप ठहर जाइए, यही कर्तव्य है। और आप राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और जिस सेवा के करने से सारी क्रियाएं अपने आप हो जाती। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण की सेवा करने से संसार में और कोई कर्तव्य बाकी नहीं होता। जिसको इतना ज्ञान नहीं है तो वो कृष्ण की सेवा छोड़ करके साक्षात और पानी पिलाने के लिए जाता है। उसको ज्ञान नहीं कि करोड़ों करोड़ों लोगों को पानी पिलाने का जो फल है वो कृष्ण के तृप्त हो जाने से वही फल है। इसको ज्ञान नहीं है, वो नहीं सोच रहा है राधा कृष्ण की मैं सेवा कर रहा हूँ। फिर उसको घर में रह करके दरिद्र लोगों को के साथ में रह करके उनको पानी पिलाए खिलाए और लोक हित कर काम करते हुए अपना भजन करे, माता पिता की सेवा करे, अपनी पत्नी के साथ में रहे, उनकी उनका पालन पोषण बच्चों का करे, अपनी बेटी को बेटे को गोद में लेकर के खिलाए। यही समझे कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, बस इतना ही उनके लिए। और जिसको ऐसा हो गया ये कृष्ण की सेवा करने से संसार का ओ कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा, कृष्ण की सेवा करने से सारे हमारे जीवन का कर्तव्य हो गया और मैं कर रहा हूं साक्षात कृष्ण, वो आदमी कुछ नहीं इधर उधर नहीं देता। ये समाधि में हो रहा है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं। उनको कह दिया ये जाओ गिड़गिड़ाए रोए हजार हुआ नहीं, जाओ ये भजन कीजिए। तो इसको कहते हैं आत्माराम। आत्मा में जो रमण करता है, आत्मा के द्वारा कृष्ण की सेवा करने वाले जो हैं नारद प्रभृति ऋषि लोग जो हैं ये इस कोटि में आते हैं। उनसे प्रेम करो और नहीं करो, किसी को पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। संसारिक कामना और संसारिक काम वासना उनको छूती नहीं है। तीसरी बात, गुरुद्रोही। गुरुद्रोही मैंने क्या, माता पिता हैं, सारा जीवन पेट में रख करके मैया ने पालन पोषण किया, पिता सारा जीवन इधर उधर करके पुत्र का और बेटी का पालन किया, और इससे जहां विवाह शादी हुई बस माता पिता को छोड़ करके चला गया, या घर में रहते पर भी क्या दिन रात खांसता रहता है, हमारे बेटे को नींद नहीं आती, हमारी पत्नी को नींद नहीं आती, घर से चले जाओ हम तुमको वहीं पर कुछ दे दिया करें, ये गुरुद्रोही बिना कारण। और एक होता है कारण बचता, उसको खांसी आती है, आप खांसी भी नहीं आती, पत्नी कहती है कि ये बूढ़ा जब तक रहेगा हमारा संसार ठीक नहीं चलता, इसको बूढ़े को यहां चाहता बूढ़िया को हटाओ, ये गुरुद्रोही है बिना कारण या कारण भी उसकी सेवा नहीं करते। ये लोग प्रीति करो और न करो, ये प्रीति नहीं करते, गुरुद्रोही लोग। और तीसरे हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने क्या, की हुई भलाई को मानने वाले कृतज्ञ कहलाते हैं। माता पिता गुरुजन मित्र बंधु बांधव जो भलाई करने वाले हैं उस भलाई को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बदले में उससे प्रीति रखते हैं। किंतु जो अकृतज्ञ हैं, जैसे कंस अकृतज्ञ, हम लोगों में अधिकांश अकृतज्ञ है, विशेष करके हम देखते हैं आजकल में कौन ऐसे हैं, बहुत कम दो चार होंगे जो अपने मैया बाप की सेवा कर, उन लोगों को याद रखना चाहिए मरने के बाद में उनको अपने मांस खाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। कल एक स्थिति में यदि कोई सबको छोड़ करके भगवान का भजन करता है उस स्थिति में तो मुकुंद परिहित गतो क्या है कर्तव्य, भगवान का भजन करने से उसके माता पिता सबका ऋण दूर हो जाता है। और यदि माता पिता भगवान का भजन नहीं करता तो ये सब प्रकार के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, ये याद रखो, अपना मांस खाना पड़ेगा। भैया ने कितना कष्ट किया, पिता ने कितना कष्ट किया पुत्र के लिए, और आदमी भूल जाता है थोड़े दिनों के बाद, बुढ़िया जब होती है तब उसको याद आती है कि हमारी बेटा हमारा सेवा नहीं करता, उसको भी यदि याद होती ना पहले तो अपने माता पिता की वो सब लोग सेवा करते। ये हमारी भारतीय संस्कृति की, देखो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की कैसी सेवा की, तो ऐसा नहीं करते, वो है गुरुद्रोही या अकृतज्ञ। अकृतज्ञ मत, तो अकृतज्ञ है उनकी प्रेम करो और ना करो वो किसी से नहीं करते। कृष्ण मुस्कुरा कर बोले इन में से चार वाले अंतिम और दो वो छह में से मैं कोई नहीं, कोई नहीं है। वो सोच रही थी गोपियां जो एक में से किसी न किसी में तो जरूर आएंगे, कृष्ण ने इनकार कर दिया जो मैं इनमें से किसी, तो किस लिए उनको छोड़ा, हम तो आपसे प्यार करती थी प्रेम करती थी निश्चल। कृष्ण ने कहा तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, कैसे, यदि किसी को व्यक्ति को जो गरीब धनहीन है, जिसको धन नहीं दरिद्र है, और उसको कोहिनूर हीरा मिल जाए, कहनूर हीरे पर मिलने पर उसका वो प्रभाव नहीं समझा कि कहनूर का हीरा का कितना मूल्य है, वो बच्चे को खेलने के लिए दे दिया, अब किसी ने कहनूर हीरा वो ले लिया, गुम हो गया, अब किसी ने कहा जारी कहनूर हीरा था वो साधारण पत्थर कांच नहीं था, कहनूर हीरा था, उसका मिल करोड़ों रुपए से लेकर अरब खरब रुपया था, हाय हाय मैं खो दिया, किसी प्रकार से मिला था, अब वो दिन रात उसी की चिंता करता है, मैं कैसा दुर्भागा कौन दूरा मैंने खो दिया। इसीलिए मैं अपने प्रेम की रिन्यू करने के लिए तुमसे मिला और मिल करके मैं अंतर ध्यान हो गया जो तुम अब हमारी कैसी मीठी बोली थी, कैसे हमें तुम्हो प्यार करता था, इसका चिंतन करो और जगत के लोग इसको देखें। इसलिए मैं कहीं छोड़े भी आता तुम्हारे पीछे पीछे मैं खड़ा था और देख रहा था कि हमारे प्रति तुम्हारा विरह कैसा है, प्रेम कैसा है, यही देख रहा था। जगत के लोग देखें जो तुम्हारा हमारे प्रति कैसा प्रेम था, इसलिए और तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं अकृतज्ञ हो गया, बनिया बन गया या आत्माराम। मैं आत्माराम नहीं हूं। आत्माराम होता तो बंसी से तुझे बुलाता क्यों और फिर मैं अभी आ गया क्यों? आत्माराम होता तो यशोदा मैया के रोटी के लिए और मक्खन के लिए मैं ललकता और रोता क्यों? मैं तुम्हारे दरवाजे पर क्यों जाता, मक्खन चुराने के लिए क्यों जाता? यदि आत्माराम होता, आत्मा काम होता तो मैं क्लिंग से तुम लोगों को बंसी पर बुलाया क्यों? बुलाया रात में तुम्हारे साथ में नित्य किया क्यों किया? आत्मकाम आत्मरमण होता तो नहीं, मैं आत्मकाम भी नहीं हूं, आत्माराम नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रेम के लिए ललकता हूं इसलिए तुमको बुलाया, आत्माराम नहीं। हाँ, आत्माराम इस अर्थ में हूं, मेरी आत्मा राधा जी हैं, मैं उस राधा जी में रमण करता हूं इसलिए आत्माराम हूं। आत्मकाम हूं किस लिए? मेरी आत्मा राधा जी है, बस उसी की सेवा, उन्हीं की कामना करता हूं इसलिए मैं आत्मकाम हूं और हमारी कोई कामना नहीं। गोपियों, जैसा मैं हूं तुम्हारा, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, तुम्हारे प्रेम बढ़ाने के लिए। न पारे हम निरवद्य संयुजा ससाधु कृत्या बुधा जिता पिवा माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृत्य तत्व पश्चात। हे गोपियों, मैं सच सच में कहता हूं, प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम्हारे इस निश्चल प्रेम के लिए, निर्मल प्रेम के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हूं। कहो किस लिए ऋणी? आप तो सबका ऋण चुका देते हैं, मैया का ऋण भी सबका ऋण चुका दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों? मैं यदि कहूं जैसे कोई बर मांग लो तो दूसरा होता तो बर मांग लेता, तो तुम लोग ये बर मांगती हो कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं, कुछ सेवा दी, तो और मैं ऋणी बन जाता हूं। इसलिए मैं आपका ये ऋण और भी ऋणी हो जाता हूं। दूसरी बात, इसलिए मैं, हमारे लाखों भक्त हैं, एक दो नहीं करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हमें चाहते हैं और उनको यथा योग्य मैं जो चाहते हैं मैं पूरा करता हूं। तुम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, लोक लज्जा छोड़ दी, अपने सब कुछ छोड़ करके हमारे पास में अखंड प्रेम लेकर के हमारे पास आई, बस तुम्हारा एकमात्र मैं प्रियतम हूं और कोई नहीं है। मैं यशोदा को कैसे छोड़ दूं, नंद बाबा को कैसे छोड़ दूं और जितने भक्त हैं नारद को कैसे छोड़ दूं? मेरे लिए संभव नहीं, छोड़ने से मैं उनका ऋणी हो जाऊंगा। इसलिए ऐसा मैं नहीं कर सकता जो तुम्हारे जैसा अखंड प्रेम लगकर सबको छोड़ करके तुम्हारे पास में रहूं, ये तो मेरे लिए असंभव। इसे हे गोपियों, तुम हमें क्षमा करो। ब्रह्मा जैसी, देवताओं जैसी कोटि कोटि युगों की आयु लेकर के भी मैं तुम्हारी इस ऋण को मैं भूल, हे गोपियां तुम हमारे ऊपर में प्रसन्न हो जाओ, मैं किसी का ऋणी नहीं, केवल तुम लोगों का मैं ऋणी हूं। गोपियां और क्या चाहती, जब सुना ये कृष्ण कह रहे हैं, बार बार कहने लगे मैं तुम्हारा ऋणी, बस गोपियां द्रवीभूत हो गई। उसने जी कृष्ण से कहा, आप जीत गए हम हार गए, अभी तक हम लोग जीती हुई थी, आपने यह हार स्वीकार करके और हमारा मान बढ़ा करके आपने हमें जीत लिया, हम आपकी दासी हो गई, सचमुच में आप किसी युग्य हैं, गोपियां उनकी हो गई। ये बतलाई, ये प्रेम जगत में है, ये किस लिए? इस कथाओं को सुन करके हमारा चित्त ऐसा हो, पहले आत्माराम हो, आत्मकाम हो, माता पिता जैसे बने,
कृष्ण का भजन करें और भजन करते करते इन चीजों की उपलब्धि करें। यदि सचमुच में कोई इन बातों को ग्रहण करता है तो साधु संतों का ऋण कभी भी नहीं चुका सकता इन बातों के लिए। आप लाख जन्म में अपने भजन करके इन चीजों को नहीं समझ सकते। हम लोग ये सारा भजन करके सारा जीवन और आपको मुफ्त में बिना पैसा का ये जो बांट रहे हैं ये कोई नहीं कर सकता। कोई भी कथावाचक भजन नहीं करते हैं, पैसा के लिए आते हैं, पैसा लेकर के चले जाते हैं। इन गंभीर चीजों को आपको समझाएंगे नहीं। जो भजन करेंगे, जिनका हृदय निर्मल है, इन चीजों को समझेंगे। इसलिए इन चीजों को समझिए, ऐसा ही भजन करने की चेष्टा करें। इसके बाद में क्या हुआ, हुआ क्या, गोपियां मिल करके कृष्ण को बीच में रखकर बड़ी जोर से कीर्तन करने लगी। जरा कीर्तन, विक्रीडितं ब्रजवधूभिः इदं च विष्णो सध्यान्वितो शुणीष्यात् अथ वर्णीत च भक्ति परम प्रतिलब्ध कामं हृदरोगमाशु अपहरणत् चिरेण। सुखदेव जी गोस्वामी जी कह रहे हैं, संसार के हृदय में, लोगों के हृदय में कामना भरी पड़ी है। विशेष करके काम, संसारी काम जो कुत्तों में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, सब में है काम। तरह तरह की कामनाएं भी हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वर्ल्डली डिजायर आर देयर। भगवान का भजन कठिन है। तभी यदि कोई श्रद्धा पूर्वक निश्चयातक रूप में उनमें विश्वास कर श्रद्धा पूर्वक अनुश्रणीयात इन कथाओं को जो हम लोगों ने वर्णन किए, भागवत की कथाओं को अनुश्रणीयात निरंतर श्रवण करे, या जिन्होंने इस सब लीला कथाओं का स्मरण करके भजन पूजन के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिनके हृदय के काम रोग दूर हो गए हैं, कोई भी संसारी कामना वासना नहीं है, कृष्ण प्रेम में रंग गए हैं, गोपियों के भाव उनके हृदय में आ गए, ऐसे गुरु से जिन्होंने अपने गुरु से सुना है परंपरा से, ऐसे गुरु से इनको सुने और सुन करके अथपरणीत जस उनका जो वर्णन करता है श्रद्धा को, तो होता क्या है, उसके हृदय में ये प्रेमा भक्ति आती है। और प्रेमा भक्ति आने से जितने परिमाण में ये प्रेमा भक्ति प्रेम उदित होगा, उतने परिमाण में संसार का काम दूर होगा। पहले काम दूर होगा, इसके बाद में भक्ति आएगी, लाख जन्मों में नहीं होगा। जितने परिमाण में भक्ति आएगी उतने ही परिमाण में संसार के काम दूर होंगे। अनर्थों को दूर करने का यही उपाय है। जितने परिमाण में आप हरि नाम करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, स्मरण करेंगे, उतने ही परिमाण में ये संसार की कामना दूर हो गए। पहले पानी सूख जाए तब नदी में हम पार कर जाएंगे, ये कभी नहीं होने का भाई। पहले सब कामों को दूर कर देंगे तब भगवान का भजन करेंगे, ऐसा नहीं। जो जहां जिस स्थिति में है, थाने स्थितांग तनुवांग मनोभी, जो जहां पर है, गृहस्थ है, त्यागी है, जो जहां है, जिस अवस्था में है, अजामिल की भांति जो है उसी स्थिति में, दुराचारी है, जैसे कि वो वेश्या के प्रति आसक्त, बिल्व मंगल था वेश्या पर आसक्त, वहीं से जो जहां पर है, जिस स्थिति में है, स्थाने स्थिता जो वहां है, वहीं से भगवान का भजन आरंभ कर दो। ये मत देखो जब मैं किस स्थिति में हूं, ये छोड़ करके भगवान का भजन करूंगा, ऐसा नहीं। आज ही से भगवान का नाम लेना आरंभ करो, हरि कथा का अनुशीलन करना आरंभ करो। जितने परिमाण में भक्ति आएगी उतने परिमाण में संसार की ये सब कामना वासनाएं दूर होंगी। और यहां तक कि ऐसा हो जाएगा, चिंतन करते 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 प्रेम भी आएगा और हृदय की ये कामना वासनाएं काम जो दूर नहीं होती, नारद जी मुक्त होने पर भी पीछा नहीं छोड़ा, बड़े बड़े लोग उनको कामना नहीं थी। शंकर जी को देखो कैसे मोहिनी के पीछे, माया के पीछे दौड़े, इसलिए बड़ी भारी मुश्किल है। माया ऐसे कौन है जो जगत में, जिसको कहा माया नचाया इस जगत में नहीं नचा दिया, मुक्त पुरुषों को भी नचा देती है, उसको छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए जितने परिमाण में हरि कथा सुनेंगे उतने परिमाण में प्रेम आएगा, प्रेम होने से अपने आप वो दूर हो जाएगा और भक्ति आएगी, नर्थ दूर हो जाएगा और तब मैं भगवान का भजन करूंगा। एक मन को लाखों जन्मों में कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं असंभव है ये बात। ये मन 22 से भी अधिक प्रबल है, कहां से कंट्रोल करेंगे मन को, नहीं हो सकता। इसलिए एक ही उपाय है, हरिनाम कीजिए, भगवान की लीला कथा को सुनिए, शुद्ध गुरु पदाचय कीजिए, वैष्णव के संग में रहिए, हरि कथा सुनिए, अपने आप ये चीजें हो जाएगी। इस तरह से श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है, शुद्ध रूप में सुनिए। इसके बाद में फिर आगे जुगल गीत है। इसके बाद में कृष्ण द्वारका में चले गए, मथुरा चले गए, गोपियां तिरह में कैसे तड़प रही हैं, ये सब प्रसंग आएंगे आगे बहुत सी। इसके बाद में द्वारका की लीलाएं होंगी, उनमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, वो धीरे 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 आएंगी, एक दिन में नहीं सुनाया जा सकता, बहुत समय लगता है। एक दिन में हम लोग क्या सुनाएंगे, इसलिए हमने जो कुछ समझा उचित कुछ सुनाया, अब कल आप लोगों को ये लोग सुनाएंगे। हमें कल ही अभी विदेश जाना है, केवल एक ही जगह नहीं 30-40 राष्ट्रों में हमें जाना है, वहाँ के लोग भी इन कथाओं को सुनना चाहते हैं। उनसे ये नहीं बल्कि उनकी साधारण भक्ति की बातें हम सुनाएंगे, भारत की संस्कृति की बातें सुनाएंगे। लाखों लोग इसके लिए उत्कंठित है, इन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। आप लोग भारत में जन्मे हैं, आप लोगों का बहुत ही संस्कार है, सौभाग्य है भारतवर्ष में जन्मे। आप लोग जो नहीं अभी तक पालन करते हैं, वो मांस मछली प्याज लहसुन धूम्रपान ये सब चीज़ों को आज ही से बंद कीजिए और भगवान का नाम कीजिए और हरि कथा का श्रवण कीजिए। यही हमारा आप लोगों के लिए निवेदन है, इसी में आप लोगों का कल्याण है, आप सुखी रह सकते हैं। अभी 7:45 से कोई प्रोग्राम संगीत का होना है, अभी वो संगीत वाले से बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं, वो लोग ये स्टेज पर पधारे और अपना कार्यक्रम उपस्थित करें। और अब हम लोग आज नहीं प्रोग्राम, वो लोग आ गए हैं नहीं आए हैं, जोगिंदर जी ने हमसे कहा था कि वो 7:45 माने क्या संदार में बतला रहा। जुगल गीत में 24 श्लोक हैं, 24 श्लोक 24 घंटा है, इसमें 2 जुगल हैं, 2 जुगल मैंने 8 बनते हैं, 12 घंटा हुआ, तो 2 का 1 है। इसमें कृष्ण की 24 घंटे की जो जो लीलाएं और जब जब होती हैं, इसको 8 भागों में बांटा है। निशांत लीला, प्रातः काल की लीला, इसके बाद में पूर्वान्न माने दोपहर से पहले वाली लीला, फिर दोपहर की लीला, फिर अपराह्न लीला, इसके बाद सायंकालीन लीला, प्रदोष लीला, इसके बाद में मध्यरात्रि की लीला, ये 8 भाग लीला। 8 भाग ये 24 घंटे में से ये करीब किया गया है। तो कृष्ण की जो साधक लोग हैं 24 घंटे की लीलाओं को 8 भागों में बांटकर दिन रात उसका चिंतन करते हैं, इसको अष्टकाली लीला का चिंतन कहते हैं। ये गोपियां 24 घंटे को इसी में बांट करके कृष्ण की अष्टकाली लीला का वो चिंतन कर रही हैं, कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। उस समय गोपियों के साथ में, यशोदा जी के साथ में, नंद बाबा के साथ में, सखियों के साथ में, सखाओं के साथ में, गायों के साथ में कृष्ण कैसा व्यवहार करते हैं, इसका वर्णन। गोचारण जाकर के अपराह्न में क्या करते हैं, उसका विवरण। दोपहर में सखाओं को छोड़ करके और गोपियों से मिलते हैं, सूर्य कुंड में मिलते हैं, राधा कुंड में मिलते हैं, उस सब का चिंतन। फिर गायों को लेकर के लौट करके आते हैं, फिर यशोदा जी उनको कैसे आरती उतारती हैं और फिर कैसे खिलाती पिलाती हैं, गायों का दोहन करते हैं, इसके बाद में घर में आकर के भोजन करते हैं, फिर सोने की तैयारी में लगते हैं, फिर सबको छोड़ करके गोपियों से मिलते हैं। ये आठ प्रकार की लीला अष्टकाली है। इस युगल गीत में ये आठ प्रकार की लीलाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन है। साधक लोग उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हैं जैसे कि गोपियां करती थी। हमारे टीकाकारों ने इसको इस प्रकार से विभाग किया है और कैसे उनमें विरह आते हैं और कैसे उनके मिलन में सुख होता है जब उनसे मिलती हैं, इस सब का उसमें बहुत सरस सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद में कृष्ण मथुरा में आते हैं, कंस को पछाड़ते हैं, चारण को और ये मुष्टि को मारते हैं और इसके बाद में पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ से लौट करके कुछ दिन वहाँ पर मथुरा में रहते हैं और उसी समय में अक्रूर जी को जिसको उद्धव जी को भेजते हैं ब्रज में कि हमारे माता पिता तड़प रहे हैं हमारे विरह में, विशेष करके गोपियाँ जो कि संपूर्ण रूप से हमको सर्वस्व दे दिया है, वो हमारे बिना जीवन जीवित नहीं रह सकती, हमारे लिए देह दायित्व सर्वस्व का त्याग करती हैं, दिन रात विरह में तड़प रही हैं, केवल हमारे श्याम कल आएंगे इसलिए जीवन धारण किए हुए हैं, उनको जरा थोड़ा सा ये दे और सांत्वना दे आओ। किस लिए कहा जानते हैं कि उद्धव क्या मैं